हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन का हर वार विक्रांत रंधावा पर भारी पड़ रहा था। उसे बार बार अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ ने उसे इतनी शक्तियाँ क्यों नहीं दीं। तभी अमन ने लगातार 3-4 बार तिलिस्मी पत्थर से विक्रांत पर वार किए। उन वारों से विक्रांत के शरीर में अब कोई जान नहीं बची थी। वो एकदम से शिव मंदिर के सामने जाकर बेसुध गिर पड़ा। उसके अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी जो आसमान में गायब हो गई। विक्रांत को धीरे धीरे होश आने लगा। अमन के लगातार तिलिस्मी पत्थर के वार करने से विक्रांत के अंदर जो राक्षस का अंश था वो बाहर निकल चुका था। जो इंसानी विक्रांत था वो शिव मंदिर के सामने गिरा हुआ था। जैसे ही राक्षस का अंश वहां से निकलकर गायब हुआ, विक्रांत को होश आने लगा। अपने सामने अमन को देखकर और अपने आसपास की जगह को देखकर वो अजीब सा बर्ताव करने लगा। ये सब क्या हो रहा है और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो अमेरिका में था, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? विक्रांत को कुछ भी याद नहीं था। राक्षस के अंश के उसके शरीर से निकलने के बाद उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बिल्कुल एकदम सामान्य इंसान बन चुका था। जैसे ही तारापरी ने ये देखा, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब अमन उसकी हर तरह से रक्षा करने के लिए तैयार है। तारा जल्दी से अमन को गले लगा लिया। अमन ने भी तारा को गले लगा लिया। पूरे 6 दिनों के बाद वे दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे से एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहते थे। लेकिन हाँ, विक्रांत और उसकी माँ भी थीं, इसलिए वे ज्यादा करीब नहीं रह सकते थे। तारापरी को अपने करीब पाकर अमन बहकने लगा था। तभी विक्रांत रंधावा जल्दी उठकर अमन के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और कहना शुरू कर दिया, मेरे यार, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दे, मुझे कुछ भी याद नहीं है। आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ था? मुझे बस इतना याद है कि लास्ट टाइम मैं ऑफिस में एक ज़रूरी काम कर रहा था। अचानक से मेरा सर भारी होने लगा था। उसके बाद से मेरे साथ क्या हुआ और मैं इंडिया कब आया और इंडिया आकर मैंने क्या क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी अमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने जो कुछ किया किसी और के वश में आकर किया। अभी तुम बिल्कुल ठीक हो। और हाँ, डोंट वरी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ से लौट सकते हो और सीधा घर जा सकते हो। घर जाने के बाद तुम अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करके वापस जा सकते हो। अमन की बात सुनकर विक्रांत उसकी ओर देखने लगा और फिर बोला, यार, अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं आप लोगों के साथ ही घर लौटना चाहूँगा। प्लीज़ मुझे भी अपने साथ आने का मौका दो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को इस तरह से बीच मुसीबत में छोड़ कर जाऊँ। आसपास की जगह को देखकर विक्रांत ने अंदाज़ा लगा लिया था। विक्रांत की बात सुनकर अमन मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी मैं हूँ ना अपने परिवार के साथ। अगर अपने परिवार को अच्छे से बचा लूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विक्रांत रंधावा ने कहना शुरू कर दिया, तो क्या तूने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया है? इसलिए तो मुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता है। तो अच्छी तरह से जानता है, अगर मैंने कुछ गलत किया भी है तो वो मैंने अपने आप नहीं किया है, मुझे किसी ने करवाया है। तब अमन ने एक नज़र तारा की ओर देखा। तारा ने भी अपनी गर्दन हिला दी और करिश्मा जी ने भी हाथ का इशारा किया। फिर अमन विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए बोला, ठीक है दोस्त, अगर तू साथ रहना चाहता है तो हमारे साथ चल सकता है। तब अमन अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, मॉम, आपको इस तरह से यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप जानती हो ना, आपके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता था। अगर मैं आज समय पर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। और आप तारा को इस सफ़र पर क्यों लेकर आई हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं तारा एक मामूली इंसान है और अगर वो इस सफ़र पर रहेगी तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। जैसे ही अमन ने ये कहा, करिश्मा जी को हंसी आने लगी। उसने हंसकर तारा की ओर देखा। तारा ने अपनी गर्दन दोनों तरफ हिला दी करिश्मा जी को मना करते हुए, क्योंकि वो अभी अमन के सामने अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। अभी अमन को सच्चाई जानने का समय नहीं आया था। तब जैसे ही अमन ने अपनी माँ करिश्मा जी को हंसते हुए देखा तो वो उनसे बोल उठा, मॉम आप हंस क्यों रही हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप काफी सालों से पिताजी को ढूंढना चाहती हैं, और केवल आप ही नहीं, मैंने भी पिताजी को ढूंढने की कम कोशिश नहीं की है, लेकिन हमें नाकामी ही हाथ लगी है। लेकिन अगर अब आपको पूरा यकीन है कि पिताजी यहीं शिव मंदिर के आसपास हैं, तो हम जरूर पिताजी को ढूंढने चलेंगे, अमन ने एक अच्छे बेटे की तरह कहा। और आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटा आ गया है, वो सब संभाल लेगा। लेकिन मुझे लगता है तारा को मुझे यहाँ से भेज देना चाहिए। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा और करिश्मा दोनों के मुंह से एकदम से निकला, नहीं। तब अमन दोनों को हैरानी से देखने लगा। तभी तारा परी छोटे छोटे कदम रखते हुए अमन के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, मैं जानती हूँ आपको मेरी काफी ज्यादा फिकर है, लेकिन मैं आप लोगों को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं भी पिताजी को ढूंढने का हिस्सा बनना चाहती हूँ। भले ही मैं एक मामूली इंसान हूँ, लेकिन मैं आपकी बीवी और आपके होने वाले बच्चों की माँ तो हूँ। आप अच्छी तरह से जानती हैं मेरे अंदर भी कुछ पावर्स और शक्तियाँ हैं, तो मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और फिर आप तो हैं ही, मुझे पूरी उम्मीद है आप मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। तारा की बात सुनकर अमन मुस्कुराने लगा। वो बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी हमारे साथ चलो। जल्दी ही अपने सारे अंदेशे दूर करने के बाद विक्रांत रंधावा, तारा और करिश्मा जी अमन के साथ शिव मंदिर के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे शिव मंदिर के अंदर जाकर नंदी के मुंह से जाते हुए रास्ते पर गए और उस गुफा में गए, अमन की सबसे पहली नज़र सर्प महाराज पर पड़ी। वहाँ पर इतने बड़े सर्प महाराज को पिंजरे में कैद देखकर अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, मॉम मुझे आप पर गर्व है कि आपने इतने बड़े सांप को इस तरह से कब्जे में कर लिया। तभी सर्प महाराज ने अपना इंसानी रूप बदल लिया। जैसे ही अमन ने सर्प महाराज का इंसानी रूप देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो इस सर्प से पहले भी तिलस्मी पत्थर के सफर में मिल चुका था। वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हमें अभी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें आगे जाने पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी ही वे लोग जाने लगे। अमन को हैरानी हुई कि आखिर तारा उसे सर्प महाराज से बात क्यों नहीं करने देना चाहती थी। कहीं न कहीं तारा को ये लगने लगा था कि अगर अमन ने सर्प महाराज से बात करना शुरू की तो सर्प महाराज हो सकता है अमन को ये बता दे कि तारा ने उसे कैद किया है। अमन ने तारा की बात मान ली, वो किसी तरह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, वो भी जल्द से जल्द अपने पिताजी से मिलना चाहता था। तारा, अमन, विक्रांत और करिश्मा जी सीधा उस द्वार तक ले गई जो आग के शोलों से बना हुआ था। उस द्वार का दरवाजा तो वे लोग खोल ही चुके थे, अब केवल उसके अंदर जाना था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस तरह से उस द्वार को पार करें। तभी अचानक अमन ने अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते अमन की आंखों से काफी पानी निकलना शुरू हो गया। तारा हैरानी से बुरा हाल थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमन के अंदर अब इतने सारे पावर आ गए हैं कि वो हर तरह के खतरे से लड़ने और निपटने के लिए तैयार था। इतना सारा पानी देखने के बाद करिश्मा और विक्रांत बहुत ज्यादा हैरान थे। जैसे ही वो पानी उस आग के शोलों पर पड़ा, धीरे धीरे वो खत्म होने लगा और चारों तरफ एक बार फिर से आग की दीवारें बन चुकी थीं। अब उन दीवारों के अंदर से उन लोगों को वहां से होकर गुजरना था। जल्दी ही वे लोग उसमें से गुजरने लगे। एक एक करके वे बड़े ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही थी, इसके अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तारा अमन का हाथ पकड़कर चल रही थी। अब अमन उसके बेहद करीब था, उसका जीवन साथी उसके करीब था। अब तारा का जो थोड़ा बहुत डर था वो भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि अचानक आग के शोलों ने से जले हुए चेहरे निकलकर सामने आने लगे। बाकी सारा शरीर तो उनका इंसानों का था, लेकिन उनके ऊपर की गर्दन यानी मुंडी केवल आग की ही बनी हुई थी। उनकी जगह आग ही दिखाई दे रही थी। जैसे ही तारा, करिश्मा और अमन ने ये सब देखा, वे चारों के चारों हैरान हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन आग वाले आदमियों के हाथों में आग से बनी हुई तलवारें नजर आने लगीं। अमन ने जल्दी ही करिश्मा, तारा और विक्रांत को अपने पीछे रहने का इशारा कर दिया, क्योंकि अमन उनसे लड़ने के लिए अकेला ही जाना चाहता था। लेकिन करिश्मा ने अमन से कहा, तुम्हें अकेले ही जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह ही शक्तियां हैं और मैं तुम्हारी इस लड़ाई में पूरा पूरा साथ दूंगी। तभी करिश्मा ने तारा की ओर कुछ इशारा किया। इशारों इशारों में दोनों की बात हो गई थी कि तारा अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरह से करेगी कि अमन और विक्रांत को उसकी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी विक्रांत के अंदर से राक्षस का अंश निकल जाने के बाद अब उसे ये नहीं पता था कि तारा एक परी थी।